ओम नमस्ते जी। कल हमने केवल प्रश्न प्रश्न आपके समक्ष रखा था प्रश्नोत्तर के माध्यम से ईश्वर विषयक ज्ञान विज्ञान। प्रश्न ये था कि ईश्वर तत्काल क्यों नहीं फल देता, बाद में या देरी से या जन्मांतर में देने से कर्मफल के विषय में लोगों में शंका, अनास्था, अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न होता ही है ना, तो उसको कैसे दूर करें। इस विषय में एक उदाहरण आपको दे रहे हैं महानुभाव। देखिए, कृषि विषय का उदाहरण देते हैं हम। व्यक्ति पालक जब बोता है तो 8-10 दिन के अंदर वह फलीभूत होती है और खाने योग्य हो जाती है। गेहूं जब बोता है तो 4-6 महीने उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसके फलागम के लिए, और आम की गुठली जब बोता है तो 3-5 साल लगते हैं अलग अलग किस्म के देसी या अन्य प्रकार के जो है आम होते हैं तो उनमें समय की मैच्योरिटी 3-5 साल मान के चलो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 8 दिन में उगने वाली पालक जल्दी उग गई और 4-6 महीने तक प्रतीक्षा कराने वाला गेहूं मध्यम उगा और आम की गुठली ने फलोन्मुख होने के लिए विलंब किया? ये नहीं कहते ना। पालक अपने समय पे होगी, उसका मैच्योरिटी पीरियड वही था, फलोन्मुख होने का समय वही था 8-10 दिन का, और गेहूं भी अपने समय पे फलोन्मुख हुआ, ऐसे ही आम भी बोया हुआ जो है अपने समय पर उगा, उसमें आम लग गए। जब यहां ये इस उदाहरण में हम ये नहीं मानते कि देरी नहीं मानते, तो फिर परमात्मा के न्याय व्यवस्था में क्यों शंका करते हैं? कुछ कर्मों का फल तत्काल दिया जाता है, कुछ कर्मों का फल कालांतर में मिलता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका इस जन्म में फल देना संभव ही नहीं है, वो जन्मांतर में दिए जाते हैं। तो न तो ईश्वर के न्याय व्यवस्था में देर है न अंधेर है, अंधेर तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि वो अन्यायकारी नहीं है, और देर भी नहीं है। जैसा जैसा प्रारब्ध बनता जाएगा ईश्वर उन कर्मों का फल देता चला जाएगा। तो या इसलिए ये कहना गलत है कि ईश्वर जो है पापों का फल तत्काल क्यों नहीं देता, दिए ही नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए हमने भोजन हमको भूख लगी थी, हमने भोजन किया, तृप्ति हो गई, ये जो है कर्म का फल मिला तत्काल। तो ये तत्काल प्राप्त किए जाने वाले कर्मों के विषय में आया। हमने क्रोध किया और हमारे अंदर जो है ना चयापचय को बिगाड़ने वाले एंजाइम्स पैदा हुए, ये ईश्वर की ओर से है, तो ये तत्काल फल हुआ। और कुछ फल ऐसे हैं जो कालांतर में मिलेंगे। हमने आज व्यायाम करना शुरू किया, करते 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 जाएंगे, आगे जा करके हम बॉडी बिल्डर बनेंगे, वो कालांतर में मिलेगा। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फल हैं जो एक ही जन्म में उनका फल नहीं दिया जा सकता, तो वो संचित हो जाते हैं और फिर प्रारब्ध बनता चला जाता है, जो जिसका टाइम पीरियड होता है उसका प्रारब्ध बनता चला जाता है और फिर वो फल के लिए उन्मुख हो जाते हैं। मानवों ऐसा समझना चाहिए। अगली बात आती है, ईश्वर की उपासना करने वाले आस्तिक व्यक्ति संसार में प्रायः दुखी, दीनहीन, निर्बल, निर्धन, पराधीन देखे जाते हैं, जबकि नास्तिक व्यक्ति सुखी, संपन्न, बलवान, स्वतंत्र देखे जाते हैं। ऐसा क्यों है? इससे भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास उठता है। इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर की उपासना का फल दीन, दुखी, निर्बल, पराधीन होना नहीं है। या तो उसने ईश्वर को ठीक से नहीं समझा और उसकी उपासना करने की विधि गलत है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति ईश्वर को ठीक ठीक जाने और उसकी विधिवत उपासना करे और वो व्यक्ति दुखी हो, दीनहीन रहे, निर्बल हो जाए या निर्धन हो जाए या पराधीन हो जाए। हाँ, लोक में अन्याय जरूर होता है, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन ईश्वर उपासक प्राप्त अन्याय को भी ईश्वर की कृपा से सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा। ईश्वर के यदि ईश्वर पर यदि व्यक्ति प्रगाढ़ विश्वास रखता है, और ईश्वर विश्वासी हमेशा पुरुषार्थी होता है, ईश्वर विश्वासी कभी आलसी नहीं होगा। तो जो आलसी नहीं है, पुरुषार्थी है, भला वो निर्धन कैसे हो सकता है, भला वो दीन दुखी कैसे हो सकता है? ये तो गलत ईश्वर को मानने वालों की बात है कि जो ईश्वर जैसा नहीं है वैसा उसको मान रहे हैं, और आलसी प्रमादी होकर के अपने जीवन को खुद ही दुख सागर में ले जा रहे हैं। ये उनकी कथा है, न कि ईश्वर उपासकों की कथा है। अब रही बात कि उसका दूसरा पक्ष जो था कि ईश्वर उपासक जो नहीं है, नास्तिक है, ऐसे व्यक्ति सुखी संपन्न बलवान स्वतंत्र देखे जाते हैं। महानुभाव, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, जैसे हमने चित्त की अलग अलग अवस्थाओं में आपको बताया था कि क्षिप्त चित्त वाले और मूढ़ चित्त वाले लोग, क्षिप्त अवस्था में तो संसार उन्मुख जीवन जी रहा है व्यक्ति, तो उसको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो बस ये पंच महाभूतों का पिंड जो है, ये शरीर ही उसको दिखता है, उससे परी की चीजें उसको दिखती ही नहीं है। ना आत्मा, ना परमात्मा में उसका कोई विश्वास है, न पुनर्जन्म कर्मफल में उसकी कोई आस्था है। ऐसा व्यक्ति संसार उन्मुख जीवन जी रहा है तो वो तो ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो फिर लेकिन भले ही वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वो स्वास्थ्य नियमों का पालन करता है तो उसको स्वास्थ्य रूपी इनाम ईश्वर की ओर से मिलता है। वो पुरुषार्थ करता है ईश्वरीय नियमों के आधार पर, तो पुरुषार्थ करने पर ईश्वर की ओर से जो उसको प्राप्तव्य है वो ईश्वर देता ही है ना। इसमें भले ही वो ईश्वर को माने नहीं माने, ईश्वर अपनी ओर से कर्म करने वाले को फल देता जाता है। और वो ये नहीं देखता कि अगला व्यक्ति मुझे मान रहा है या नहीं मान रहा है, मेरे नियमों का पालन करेगा तो तुझे मैं उसका फल दूंगा। ये ईश्वर की ओर से जो है ना बात है। तो हम यदि किसी नास्तिक व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता बल और स्वतंत्रता आदि को देखते हैं तो उसके उस पुरुषार्थ का फल है। और यदि हम कहें इनडायरेक्टली वो ईश्वर को मानता है, कहने को वो ईश्वर का नाम नहीं लेता, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, परंतु इनडायरेक्टली उसने ईश्वर के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको तो वो स्वीकारता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को न मानता हुआ भी ईश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, और इसीलिए ईश्वर की ओर से उसको वो फल मिलता है। तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो नास्तिक होने पर भी सुखी है, उसको वो सुख मिला ईश्वर की ओर से, वो उसके द्वारा किए कर्मों के फल स्वरूप मिला है, ऐसा मानना चाहिए। आगे बात आती है, ईश्वर चेतन है तो ईंट पत्थर सोना चांदी आदि जड़ पदार्थों में चेतनता, जैसे चलना फिरना हिलना डुलना इच्छा प्रयत्न आदि क्यों नहीं देखे जाते? बहुत ही सूक्ष्म और गहन विषय है। जैसे कि हम देखते हैं, हम अग्नि के समीप जाते हैं तो अग्नि की ऊष्मा हमारे अंदर आती है। जैसे हम बर्फ की सिल्ली को, टुकड़े को बर्फ के हाथ पर रखें तो थोड़ी देर में बर्फ की शीतलता हमारे अंदर आती है। ऐसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है, सोने चांदी आदि में भी है, तो उसकी चेतनता सोने चांदी ईंट पत्थर आदि जड़ पदार्थों में क्यों नहीं प्रकट होती, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका उत्तर हमने एक पूर्व प्रश्न में, पूर्व की श्रव्य कर्णिका में आपको देने का प्रयास किया था कि ईश्वर का एक गुण है कूटस्थ होना। हर वस्तु के अंदर समाया हुआ होते हुए भी ईश्वर अपने स्वरूप को अलग बनाए रखता है, किसी के साथ सम्मिश्रण नहीं होने देता अपने गुणों का। और यही एक विशेष बात है कि ईश्वर के अंदर सुख नाम का एक विशेष गुण है, पर वो उसने रोक रखा है, वो उसी को देता है जो उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। स्वास्थ्य रूपी नियमों का पालन करेगा तो शरीर स्वास्थ्य रूपी फल ईश्वर उसको देगा, और यदि धर्म के नियमों का, यम नियमों का यदि उच्च स्तर से पालन करेगा तो आत्मिक सुख की उपलब्धि ईश्वर कराएगा। पर यह पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में रखा है उसने सुख नामक गुण को। तो ऐसे ही समझना चाहिए, उसकी चेतनता भी है कि सभी जड़ पदार्थों में समाया हुआ होने पर भी अपनी चेतनता वो घुलने मिलने नहीं देता जड़ चीजों में, क्योंकि वह कूटस्थ है। सभी पदार्थों में व्याप्त होने पर भी अपने स्वरूप को अलग बनाए रखता है, ये उसका विशिष्ट गुण है। इसलिए ऐसा होता है कि सभी जड़ पदार्थ चेतनवत नहीं होते, नहीं दिखते। आज का विषय यहीं विराम देते हैं। ओम शम।